शान नीचे लिविंग रूम में अनुपमा जी के पास बैठा था और बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रहा और उसकी बेचैन निगाहों को इंतजार था आरवी का। कुछ देर बाद छाया अंशु के साथ सीढ़ियों से उतरती नजर आई। आधी नींद में उठाकर उसे तैयार किया गया था तो वो छाया की गोद में ही सो गई थी। शान ने देखा तो आगे बढ़कर अंशु को अपनी बाहों में थाम लिया। अंशु बड़े ही शौक से उसके कंधे पर सर रखकर सो गई। शान के लब मुस्कुरा उठे और वो उसे लेकर सोफे पर आकर बैठ गया। ऊपर रूम में आरवी जल्दी जल्दी तैयार होने में लगी थी। ये देखकर रश्मि ने उसको ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाते हुए कहा, इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की है तुझे? आराम से बैठना, मैं तैयार कर देती हूँ तुझे। आरवी फिर उठने लगी और उसे परेशान निगाहों से देखकर बोली, टाइम नहीं है यार, तुझे नहीं पता, उन्हें इंतज़ार करना बिल्कुल नहीं पसंद, देर की तो नाराज़ हो जाएंगे। तो जीजू से डर रही है? रश्मि ने भौंच खाकर उसे देखा, जिस पर आरवी ने तुरंत इनकार में सर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं डर नहीं रही, बस आज के दिन उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहती। रश्मि ने मुस्कुरा दी, तो फिर तू चिंता छोड़ दे, क्योंकि जीजू नाराज़ नहीं होंगे तुझसे, वैसे भी चांद के दीदार करने के लिए इंतज़ार तो करना ही पड़ता है। आरवी आगे कुछ कह नहीं सकी और शोपीस की तरह उसके सामने बैठ गई। शान को इंतज़ार करते करते पौना घंटा बीत गया। अब तक अंशु भी उठ चुकी थी और उसके साथ शान का वक्त भी कट गया था, पर अब उसको आरवी का बड़ी ही बेताबी से इंतज़ार था। आखिरकार उसका इंतज़ार पूरा हुआ। लगभग एक घंटे के इंतज़ार के बाद रश्मि के साथ आरवी नीचे आती नजर आई। रेड और ग्रीन रंग के कॉन्ट्रास्ट की डिज़ाइनर साड़ी, जो उसके गोरे रंग पर खिल रही थी। लंबे बालों को फ्रेंच चोटी में बांधा हुआ था, जो उसके कमर पर नागिन सी बलखा रही थी। दोनों तरफ से चोटी से निकलती कर्ली लटे उसके बालों पर अटकेलियां दिखा रही थीं। बीच की मांग में आज पूरे हक से सुर्ख सिंदूर को सजाया हुआ था। सुनहरी काजल से सनी आंखें कहर ढा रही थीं। नाक में स्टोन वाली नोज रिंग पहनी हुई थी। गुलाबी लबों को सुर्ख लाल रंग में रंगा हुआ था। कानों में गोल्ड के झुमके डाले हुए थे और गले में उसके सेट के हार के साथ मंगलसूत्र पहना हुआ था। कलाइयों में लाल और हरे रंग की चूड़ियों से भरी थीं। पैरों में पाजेब और बिछिया पहनी हुई थीं। रिंग फिंगर में मौजूद रिंग दूर से ही चमक रही थी। जैसा कि शान ने कहा था, आरवी 16 श्रृंगार करके तैयार होकर उसके तरफ बढ़ रही थी। आज गजब का नूर था उसके चांद से चेहरे पर। अधरों पर मोहिनी मुस्कान फैली हुई थी और पलकें झुकी हुई थीं। आरवी आज बेहद हसीन लग रही थी और ये साज श्रृंगार आज उसने सिर्फ शान के लिए किया था। ये एहसास ही काफ़ी था शान के लबों पर मुस्कान लाने के लिए। आरवी तो पलकें झुकाए धीमे कदमों से सीढ़ियों से उतर रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे शादी के दिल स्टेज की तरफ पल रही थी। पर आज शान की निगाहें उस पर ठहरी हुई थीं, जिसका एहसास आरवी को भी था, और शान की रूम के कही बात उसके जहन में घूम रही थी, जिससे उसके दिल में हलचल मची हुई थी। आरवी के सीढ़ियों से नीचे उतरते ही अंशु दौड़ कर आकर उसके पैरों से लिपट गई और सितारों से चमकती आंखों से उसको देखकर बोली, मम्मा आप बहुत प्रिटी लग रही हैं। आरवी ने उसको अपनी बाहों में उठा लिया और प्यार से उसके गाल को चूमते हुए मुस्कुराकर बोली, थैंक यू बेटा। बदले में अंशु ने भी उसके गाल को चूम लिया। रश्मि काफ़ी देर से शान को देख रही थी। अनुपमा जी इस वक्त वहाँ नहीं थी, ये देखकर उसके लबों पर शैतानी मुस्कान फैली हुई थी। उसने आरवी को देखा, फिर शान के पास चली गई। जीजू, अगर आपको मेरी दोस्त को ताड़ने से फुर्सत मिल गई हो तो रूम में उसका और अंशु का सामान रखा है, ज़रा ले आएंगे? शान, जो अब भी आरवी को निहारने में खोया हुआ था, उसने चौंकते हुए रश्मि को देखा और उसकी शरारत समझते हुए ज़बरदस्ती की मुस्कान लबों पर सजाते हुए दांत पीसते हुए बोला, बिल्कुल, अब अपनी वाइफ और बेटी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। गुड, तो अब जाइए, हम सब बाहर आकर इंतज़ार करेंगे। रश्मि एक बार फिर मुस्कुराई। वहीं उसकी मुस्कुराहट देखकर शान चिढ़ते हुए गुस्से में लंबे लंबे डग भरते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। शान ने आरवी को भी पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ये देखकर आरवी पहले तो हैरान परेशान सी शान को देखती रही कि अचानक उसका मूड इतना ख़राब कैसे हो गया। फिर उसने सवालिया नज़रों से रश्मि को देखा, जिस पर उसने अपनी पत्ती सी चमका दी। आरवी समझ गई कि उसी ने कुछ कांड किया है। उसने बेबसी से अपना सर हिला दिया। बेचारे शान को तो रश्मि ने कुली बना दिया था। दो तो बड़े बड़े बैगों को पहले बारी बारी सीढ़ी से नीचे उतार कर लाया, फिर घसीटते हुए बाहर पहुंचा जहां सब पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। इतनी सी देर में शान पसीने से तरबतर हो चुका था। ये देखकर रश्मि तुरंत उसके पास आ गई और पानी की बॉटल उसके तरफ बढ़ाते हुए बोली, जीजू आप तो इतने में ही थक गए लगता है, लीजिए पानी पीजिए। शान ने घूर कर उसको देखा और दांत पीसते हुए बोला, मैं नहीं थका हूँ और ना ही मुझे पानी की ज़रूरत है। इतना कहकर वो साइड से निकलकर डिग्गी के पास चला आया। छाया का बैग पहले ही वहाँ रखा था। शान ने तीनों बैग अंदर डाल दिए। कुछ देर में पार्टी थी तो अनुपमा जी और रश्मि भी उसके साथ ही जा रहे थे। अनुपमा जी ने घर में ताला लगाया और पीछे आकर बैठ गई। छाया भी पीछे बैठ गई। शान ड्राइविंग सीट की साइड का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ रहा था कि उसके कानों में रश्मि की आवाज़ पड़ी, अरे जाने मन, तू यहाँ कहाँ बैठ रही है? तू पीछे जाकर बैठ, जीजू के साथ मैं आगे बैठूंगी। शान के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े, उसने तुरंत सर घुमाकर दूसरे तरफ देखा, जहां आरवी अंदर बैठने वाली थी, पर रश्मि ने उसको रोक दिया। शान भौंसे कोड़कर उसको घूरने लगा। आरवी ने परेशान निगाहों से पहले शान को देखा, फिर रश्मि को देखकर बोली, मुझे आगे क्यों बैठने नहीं दे रही? समझा करना यार, आज तो इतनी खूबसूरत लग रही है, अगर जीजू के साथ बैठेगी तो सारा वक्त वो तुझे निहारते रहेंगे, ऐसे में हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए तू पीछे बैठेगी आंटी और छाया के साथ और मैं अंशु को लेकर आगे जीजू के पास बैठ जाऊंगी। रश्मि ने गंभीरता से अपनी बात कही, फिर शान की तरफ निगाहें घुमाते हुए कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, क्यों जीजू, सही कहा ना मैंने? शान ने आंखें छोटी छोटी करके घूर कर उसको देखा और बिना कहे ही अंदर बैठ गया। पर आरवी अब भी परेशान सी वहीं खड़ी थी। ये देखकर रश्मि ने उसको पीछे की सीट पर बिठाते हुए कहा, टाइम बर्बाद मत कर, वैसे ही देर हो गई है, जल्दी अंदर बैठ। बेबस मायूसी पीछे आकर बैठ गई। रश्मि चाहकते हुए पैसेंजर सीट पर अंशु को देकर बैठ गई और शैतानी मुस्कान लबों पर सजाते हुए शान को देखकर बोली, जीजू कार स्टार्ट करिए ना, अब किसका इंतजार है आपको? शान ने खा जाने वाली नजरों से उसको घूरा और कार स्टार्ट कर दी। आरवी उल्टे तरफ बैठी थी, जिससे बेचारा शान चाहकर भी उसको देख नहीं पा रहा था। सारे रास्ते रश्मि अपनी बकबक से उसको इरिटेट करती रही और शान गुस्से में उबलता हुआ खामोशी से कार ड्राइव करता रहा। आरवी तो बेवजह ही उन दोनों के बीच पिस रही थी। कहां आज वो शान का मूड खराब नहीं करना चाहती थी और रश्मि की हरकतों की वजह से वो गुस्से से लाल पीला हुआ जा रहा था। खैर, जैसे तैसे रास्ता कटा और कार ने मल्होत्रा मेंशन के अंदर प्रवेश किया। अंदर वाले गेट के पास आकर जैसे ही गाड़ी रुकी, गार्ड ने तुरंत आकर दरवाजा खोल दिया। रश्मि ने फिर आरवी को पकड़ लिया और अंदर की तरफ बढ़ गई। ये देखकर शान और ज्यादा खींच उठा। गार्ड सामान अंदर लेकर चले गए, छाया अनुपमा जी के साथ आगे बढ़ गई। रह गया बस शान, जिसके साथ अंशु थी तो वो अपनी बेटी के साथ आगे बढ़ गया। बाकी सब तो अंदर चले गए, पर आरवी को दरवाजे पर ही खड़ा किया हुआ था। मन तो था शान का कि कहे रश्मि को कि ले जाए अपने दोस्त को, अब यहाँ क्यों रोका हुआ है उसे, पर सब वहाँ थे इसलिए वो शांत ही रहा।
शान और आरवी को एक दूसरे के साथ खड़ा किया, साथ में अंशु भी थी और शान की गोद में चढ़ी हुई थी। पहले अर्पिता जी ने उनकी नज़र उतारी, फिर सावित्री जी ने तीनों को टीका लगाकर उनकी आरती उतारी और उनके ऊपर फूल और अक्षत छिड़के। अंशु तो बड़ी ही उत्सुकता से सब देख रही थी। जब तक ये हुआ, उतने में छाया चावल से भरा कलश लेकर आ गई और उसको चौखट पर बनी रंगोली के बीच में लाकर रख दिया। सृष्टि आलते की थाल ले आई और कलश के सामने रख दिया। आरती तक तो आरती नॉर्मल रही, पर जब उसने ये सब देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए, जिसे समझते हुए अर्पिता जी ने मुस्कुराकर कहा, पिछले बार घर की लक्ष्मी का स्वागत नहीं कर सके तो लक्ष्मी नाराज होकर चली गई, इसलिए इस बार आपके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आज वो सभी रस्में होंगी जो आपके और शान की शादी के वक्त नहीं हो सकी थी, और ये हमारी नहीं शान की इच्छा है। आरवी पहले ही हैरान थी, उस पर जब उसने अर्पिता जी की बात सुनी तो उसकी हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रह गई थी। उसने चौंकते हुए शान के तरफ निगाहें घुमाई। उसके अनकहे सवाल को समझते हुए शान मुस्कुराकर बोला, वादा किया था ना कि अपनी हर गलती को सुधारूंगा, तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जिस पर तुम्हारा अधिकार है, तो ये भी तुम्हारा हक था जो मेरे वजह से तुमसे छिन गया। तब तो मैं नहीं समझ सका था कि तुम्हें कैसा लगा होगा, पर जब रेहान की शादी के बाद सब रस्मों को होते देखा, तब रश्मि की खुशी को देखकर एहसास हुआ कि तब मेरे वजह से तुम्हें कितना दुख हुआ होगा। अब वक्त तो पीछे जा नहीं सकता, पर छूटी रस्में तो दोबारा हो सकती हैं, शायद इससे तुम्हें थोड़ी तो खुशी मिल ही जाएगी। शान की बात सुनकर आरवी कुछ भावुक हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए, जिन्हें देखकर शान ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, रोना नहीं है आरवी, तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट लाने के लिए सब करवाया था, अगर तुम रोओगी तो कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं रोऊंगी, शान की बात सुनकर आरवी ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया और झट से अपने आंसुओं को पोंछ लिया, जिससे साफ जाहिर था कि कितना मन है उसका इन रस्मों को पूरा करने का। शान के चेहरे पर उदासी छा गई। एक बार फिर उसको एहसास हुआ कि कितनी तकलीफ पहुंचाई है उसने आरवी को, पर भविष्य में ऐसा नहीं होगा, ये निश्चय करते हुए वो मुस्कुरा दिया। बेटा, दाएं पैर से कलश को अंदर गिराइए, फिर आलते की थाल में दोनों पैर रखकर अपने शुभ कदमों की छाप करते हुए घर के अंदर प्रवेश कीजिए, सावित्री जी ने प्यार से उसे समझाया। उनकी बात मानते हुए आरवी ने पहले हल्के से कलश को ठोकर मारते हुए उसको घर के अंदर की तरफ गिराया, फिर आलते के थाल में अपने दोनों पैरों को डाल दिया। आलते रंगे कदमों की छाप करते हुए वो ड्राइविंग रूम तक पहुंची।